चैतन्य महाप्रभु इन हिरणियों को देखकर ये उनकी कृष्ण लीला का स्मरण होता है। जिस समय वो वृंदावन में इस प्रकार विचरण कर रहे थे कृष्ण के रूप में, तो इसी प्रकार ये हिरण और हिरणिया उनके पास चली आती। तो चैतन्य महाप्रभु इन हिरणियों के भावों को देखकर स्वयं मन ही मन हंस रहे हैं और अपने कृष्ण लीला का स्मरण कर रहे हैं। हेना काले व्याघ्र तथा आइल पांच सात व्याघ्र मृगे मिली चले महाप्रभु साथ। जब इस प्रकार ये हिरण और हिरणिया चैतन्य महाप्रभु के दोनों पार्श्व में चल रहे थे और उसी समय पांच सात बाघ वहां पर आकर उपस्थित हुए। तो पांच सात बाघ चले आए और ये हिरण और हिरणियों के साथ ये बाघ भी चलने लगे चैतन्य महाप्रभु के साथ। देखी महाप्रभु वृंदावन स्मृति है वृंदावन गुणवर्णन श्लोक पड़ी लगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि ये हिरण और हिरणियों और उनके साथ बाघ ये एक साथ चल रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की वो वृंदावन स्मृति उनके मन में उत्पन्न हुई। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि वृंदावन में जिस प्रकार कोई भैरव भाव नहीं रहता है, जिस प्रकार मृग और बाघ ये दोनों में भैरव भाव है और बाघ कभी मृग को देखेगा तो नहीं छोड़ेगा, उसको खा जाएगा, किंतु यहाँ पर मुर्ग और बाघ एक साथ चल रहा है और वृंदावन में इस प्रकार का भाव दृष्टिगत होता है। वृंदावन में आपस में कोई वैरभाव नहीं रहता है पशु पक्षियों में, इसलिए चैतन्य महाप्रभु की वृंदावन स्मृति उत्पन्न हुई। वो सोच रहे थे कि वृंदावन में जिस प्रकार कोई वैरभाव नहीं है पशु पक्षियों में, तो यहाँ पर भी ये मृग और बाघ में कोई वैरभाव दृष्टिगत नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार वृंदावन की वृंदावन का स्मरण करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक श्लोक पढ़ा जिस श्लोक में वृंदावन के गुणों का वर्णन है। और ये श्लोक वस्तुतः श्रीमद् भागवत का है और इस श्लोक ब्रह्मा जी ने कहा था जब भगवान कृष्ण वृंदावन में लीला कर रहे थे वस्त्राचारण लीला। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण गए थे बच्चाओं को लेकर चराने के लिए और उनके साथ बहुत सारे गोपाल बालक थे। तो ये लोग एक दिन बच्चाओं को चरने के लिए उन लोगों ने छोड़ दिया था और एक साथ गोपाल बालकों के साथ बैठकर भगवान श्री कृष्ण भोजन कर रहे थे मन में। और गोपाल बालक जब इस प्रकार बैठे थे भगवान कृष्ण को घिर करके चारों तरफ, हर कोई गोपाल बालक सोच रहा था कि भगवान कृष्ण उसके सामने बैठे, क्योंकि भगवान कृष्ण इतने सुंदर थे कि गोपाल बालक भी एक पल के लिए भगवान कृष्ण से अलग होना नहीं चाहते, सदा सर्वदा कृष्ण के साथ रहना चाहते थे और उनके सुंदर मुखमंडल का दर्शन करना चाहते थे। तो भगवान कृष्ण अपने गोप सखाओं की इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने इस प्रकार रूप प्रकट किया था कि हर बालक सोच रहा था कि कृष्ण उसके सामने बैठे हैं। यदि भी कृष्ण बीच में बैठे हुए थे किंतु सबको ये लग रहा था कि कृष्ण उसके सामने बैठे हैं। तो इस प्रकार उनका भोजन लीला चल रहा था, सब लोग भोजन कर रहे थे और भोजन के समय ये गोपाल बालकगण घर से जो भोज्य वस्तु लाए थे वो कृष्ण को खिला रहे थे। हर बालक ये कृष्ण से कह रहा था कि कृष्ण पहले इसका टेस्ट करो, इसको देखो ये कैसा लग रहा है, उसके बाद हम खाएंगे। तो पहले कृष्ण को खिलाते थे उसके बाद स्वयं खाते थे। और कभी कभी भगवान कृष्ण भी अपने घर से यशोदा माता ने जो दिया है उनको खाने के लिए उसको दूसरे बालकों को खिला देते और उनको खिलाने के पश्चात स्वयं खाते हैं। तो ब्रह्मा जी इस लीला को देख रहे थे आकाश, देवतागणों के साथ ब्रह्मा जी देख रहे थे इस लीला को, तो उनके मन में ये मोह उत्पन्न हो गया ब्रह्मा जी के मन में कि क्या ये कृष्ण भगवान है जो इस गोपाल बालकों का जूठा खा रहा है, क्या ये भगवान हो सकता है। तो ये ब्रह्मा जी के मन में ये संदेह उत्पन्न हो गया। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि ठीक है, यदि कृष्ण भगवान है तो इनकी परीक्षा लेना चाहिए, तो हम परीक्षा करके देखते हैं कि कृष्ण कैसा भगवान है। तो ब्रह्मा जी आए उस स्थान पर, और उसी समय जब ये गोपाल बालकगण कृष्ण के साथ भोजन कर रहे थे, तो उनके वस्त्र थे जो बछड़े थे वो दूरी पर चल रहे थे, तो घास के लोभ से ये लोग आगे निकल गए बछड़े। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने उनको चुरा लिया बछड़ों को। तो जब बछड़े दिखाई नहीं दिए तो सब गोपाल बालकों ने कभी किसी की दृष्टि चली गई बछड़ों की ओर, और देखा कि बछड़े पास में नहीं है, बहुत दूर निकल गए हैं। तो ये गोपाल बालकगण ये व्याकुल हो गए, उन लोगों ने सोचा कि कहीं बछड़े कहीं चले जाएंगे और हमें नहीं मिलेंगे, और हम बिना बछड़े के घर पर जाएंगे तो हमें डांट फटकार मिलेगी। तो ये डर के मारे ये लोग सब दौड़ने लगे बछड़ों को खोजने के लिए। तो कृष्ण ने कहा कि सखा तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग यहीं भोजन करो, मैं जाता हूँ बछड़ों को लाने के लिए। ये कहकर भगवान कृष्ण निकल गए बछड़ों को खोजने के लिए, और गोपाल बालकगण वहां पर भोजन कर रहे थे। तो उसी समय ब्रह्मा ने इन बालकों को भी चुरा लिया, पहले तो बछड़ों को ले लिया था, अब उन बालकों को ले लिया, क्योंकि कृष्ण उनके पास नहीं थे। और कृष्ण जब गए बछड़ों को खोजने के लिए, देखा कि बछड़े नहीं मिल रहे हैं कहीं पर, तो फिर जब वो लौट आए गोपाल बालकों के पास, देख रहे हैं कि गोपाल बालकगण भी नहीं है, उनके सखागण भी वहां पर नहीं है। तो भगवान कृष्ण आश्चर्यचकित हो गए कि क्या हुआ। तो फिर वो सोचने लगे कि ये तो ब्रह्मा जी का खेल है, ब्रह्मा जी ने चुरा लिया है हमारी परीक्षा का खेल, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान और सर्व अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ है, ब्रह्मा के हृदय की बातों को जानते हैं भगवान, तो समझ गए कि ये ब्रह्मा जी का खेल है। तो ब्रह्मा जी को अपना ऐश्वर्य प्रदर्शन करने के लिए भगवान कृष्ण ने अपने को असंख्य गोपाल बालकों के रूप में विस्तार किया। तुरंत जितने गोपाल बालक वहां पर उपस्थित थे, भगवान कृष्ण उतने गोपाल बालक हो गए, और जितने बछड़े थे उतने बछड़े भी हो गए। तो इस प्रकार जैसे बछड़े चर रहे थे और गोपाल बालक भोजन कर रहे थे, ऐसी लीला पुनः होने लगी। तो ब्रह्मा जी इन लोगों को चुरा कर एक स्थान में रखकर इनको योग निद्रा में सुला दिया ब्रह्मा जी ने, और आए देखने के लिए कि अब कृष्ण क्या कर रहे हैं। जब ब्रह्मा जी लौट कर आते हैं, देखते हैं कि ऐसी लीला चल रही है कृष्ण की जैसे पहले चल रही थी, बछड़े ऐसे ही चल रहे हैं और गोपाल बालकों के साथ कृष्ण भोजन कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए कि क्या हुआ। तो ब्रह्मा जी ने पहले सोचा, जिन बछड़ों को और गोपाल बालकों को मैंने चुरा लिया था और उनको सुलाया था योग निद्रा में, ये लोग तो वहां से उठकर नहीं चले आए। तो पुनः जब उनके मन में इस प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है, तो ब्रह्मा जी फिर देखते हैं कि जितने गोपाल बालक हैं और जितने बछड़े हैं सब विष्णु मूर्ति, चतुर्भुज विष्णु मूर्ति रूप धारण किए हुए। तो ब्रह्मा जी को ज्ञान हो गया कि ये जो बछड़े और गोपाल बालकगण है, ये वो गोपाल बालक और बछड़े नहीं, ये स्वयं विष्णु मूर्ति सब है, भगवान कृष्ण ने अपने को प्रकाशित किया है। तो ब्रह्मा जी का मोह तुरंत भंग हो गया। तो अपने हंस वाहन से ब्रह्मा जी उतरे नीचे, और जाकर कृष्ण के चरण में गिर पड़े ब्रह्मानंद जी, और गिर करके ब्रह्मा भगवान कृष्ण के चरण में ब्रह्मा जी कृष्ण की स्तुति करने लगे और अपना अपराध मार्जन करने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। तो वही ब्रह्मा जी ने जब देखा ये वृंदावन की लीला भगवान कृष्ण की और वृंदावन का ऐश्वर्य, तो वृंदावन की प्रशंसा करने लगे ब्रह्मा जी। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने ये श्लोक कहा था जो अब चैतन्य महाप्रभु उस श्लोक को पढ़ रहे हैं, यत्र नहीं तर्क दुर्वैराह सहसम मुगादय मित्राणी वाजिता वास द्रुत रूप दर्शनाधिक। कहते हैं कि यह वृंदावन भूमि धन्य है, इसके गुण या वैभव ये सर्वोच्च है, क्योंकि यहाँ पर जो मृग और पशुओं में जो वैरभाव नैसर्गिक होता है, प्राकृतिक रूप से पशु पक्षियों में वैरभाव होता है, एक पशु दूसरे पशु का आहार बनता है, ये स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, किंतु वृंदावन में इस प्रकार का स्वभाव नहीं देखा जाता। पशु पक्षियों में ये नैसर्गिक वैरभाव नहीं देखा जाता, वहां ये मित्रता उत्पन्न हो जाती है। जहां वैरभाव उत्पन्न होना चाहिए वृंदावन में, ये वैरभाव नष्ट होकर मित्रता उत्पन्न हो जाती है। क्यों ऐसा होता है वृंदावन में? ना, ये भगवान अजित के आवास स्थान है। भगवान जो अजित, जिनको जीता नहीं जा सकता, वो भगवान अजित कृष्ण, उनका ये नित्य आवास स्थान है वृंदावन, और उनका आवास का नित्य वासस्थान होने के कारण वृंदावन में, वृंदावन भूमि में ये गुण उत्पन्न हो गए हैं। जिस प्रकार भगवान के गुण है, उस प्रकार उनके निवास स्थान का भी गुण ऐसा ही है। भगवान का जिस प्रकार शत्रु मित्र कोई नहीं, तो भगवान कृष्ण इस प्रकार गीता में कहते हैं कि मेरा कोई शत्रु और मित्र नहीं, न मैं द्वेषस्ति न प्रिय, मेरा किससे द्वेष भाव नहीं है और किससे मेरा प्रिय भाव भी नहीं, सबके लिए मैं संभाव पोषण करता हूं। तो इस प्रकार भगवान के जो गुण है, उस प्रकार उनके धाम का भी वही गुण है, क्योंकि धाम में भी वही गुण आ जाते हैं और भगवान के भक्तों में भी वही गुण आ जाते हैं। भक्तों में भी ये शत्रु मित्र भाव भी नहीं देखा जाता, भक्त लोग भी सबके प्रति संभाव पोषण करते हैं, तो भगवान के सारे गुण आ जाते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि वृंदावन में भी ये गुण आ गए हैं, भगवान के जैसे गुण है तो वृंदावन भूमि में ये गुण आ गए हैं, जिसके प्रभाव से यहाँ पर जो पशु पक्षी हैं इनमें शत्रुभाव नहीं, इनमें मित्रता हो जाती है। और वास्तविक यह सत्य है, यहाँ तक कि आज भी सत्य है, ये हमारा एक आंखों देखा हाल है वृंदावन का। एक बार हम गोवर्धन की परिक्रमा लगा रहे थे, गिरिराज गोवर्धन की, तो हम परिक्रमा लगाते समय आकर राधा कुंड में पहुंचे और वो ग्रीष्म काल का समय था, गर्मी का दिन था और हम शायद 11 बजे तक राधा कुंड में पहुंचे थे। तो उसी समय हमने देखा राधा कुंड के तट पर एक कुत्ता और एक बंदर, ये दोनों खेल रहे थे। ये कुत्ता और बंदरों में स्वाभाविक वैर भाव होता है, कोई कुत्ता देखेगा बंदर को तो तुरंत उसको खा जाएगा, किंतु हमने देखा कि ये दोनों खेल रहे थे, बंदर और कुत्ता, तो हमें आश्चर्य लगा और हम देखते रहे उनके खेलों को। तब तुरंत एकाएक हमने देखा दोनों खेल रहे थे और दोनों दोनों को आलिंगन करके वहां लौटने लगे, कुत्ता और बंदर एक दूसरे को आलिंगन करके वहां लौटने लगे। तो हमें भी स्मरण हुआ है उस समय वृंदावन की बात, ये वृंदावन भूमि का ही गुण है जहां ये भैरवभाव समाप्त हो जाता है, कुत्ता बंदरों में ये भैरवभाव नहीं रहा, मित्रता उत्पन्न हो गई, दोनों एक दूसरे को आलिंगन किए लौट रहे हैं वृंदावन की भूमि में राधा गुण के तट पर। ऐसा दृश्य और कहीं देखा हम देख नहीं सकते, ये केवल वृंदावन में ही संभव है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को पढ़कर वृंदावन का स्मरण कर रहा है। इस वृंदावन भूमि में जो जहाँ पशु और पक्षियों में स्वाभाविक वैर होना चाहिए, शत्रुता होनी चाहिए, वहां मित्रता उत्पन्न हो जाती है। और वृंदावन में और क्या होता है ना, रीत अर्चना आदि का, तो ये मित्रता कैसे उत्पन्न होती है, क्योंकि वृंदावन भूमि में वृंदावन भूमि का ही ऐसा गुण है जहां पर प्रवेश करते ही उस भूमि के स्पर्श मात्र से व्यक्ति का क्रोध समाप्त हो जाता है, उसके जो क्रोध स्वभाव समाप्त हो जाता है, क्षुधा और तृष्णा समाप्त हो जाती है, भूख प्यास नहीं लगती और व्यक्ति का क्रोध भी चला जाता है। ये वृंदावन भूमि का गुण, चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा ये बाघ और हिरण हिरनिया एक साथ चल रहे हैं तो उनको वृंदावन का भ्रम, वृंदावन का स्मरण हुआ है, इसलिए उन्होंने ये श्लोक पढ़ा जिसको ब्रह्मा जी ने कहा था, कृष्ण कृष्ण कह करी प्रभु जबे बलिलो, कृष्ण का ही व्याघ्र मृग नाचित लागे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन हिरणियों को और हिरणों तथा बाघों को कृष्ण कृष्ण कहने के लिए उनको प्रेरित दिए, उनको आदेश दिए और चैतन्य महाप्रभु के मुख से ये कृष्ण नाम श्रवण करते ही ये बाघ और हिरण हिरणिया ये सब कृष्ण कृष्ण कहकर ये नाचने लगे। तो कृष्ण कृष्ण का ही व्याघ्र मृग नाचते लगे, इसमें नृत्य करने लगे, कृष्ण कृष्ण का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार जब ये नृत्य करने लगे तो नाचे कूदे व्याघ्र गण मृगी गण संगे, ये अलग अलग नृत्य नहीं कर रहे थे, ऐसा हो सकता है कि जितने बाघ थे वो अलग से नृत्य कर रहे हो और जो मृग थे वो अलग से नृत्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये आपस में मिल गए, बाघ और मृग ये आपस में मिल गए और मिलकर नृत्य कीर्तन करने लगे, उनकी शत्रुता समाप्त हो गई। बाघ का जो स्वाभाविक क्रोध होता है मृग के प्रति ये नहीं रहा, ये नष्ट हो गया भगवान के नाम के। तो नाचे कुछ व्याघ्र गण मृगी गण संगे बलभद्र भट्टाचार्य देखे अपूर्व रंग, तो इस दृश्य को देखकर बलभद्र भट्टाचार्य जो चैतन्य महाप्रभु का सेवक था वो तो आश्चर्यचकित हो गया कि क्या हो रहा, इस प्रकार के दृश्य को उसने कभी देखा नहीं, जहां बाघ और मृग एक साथ नृत्य करने लगे मिलकर। तो उसके बाद और एक आश्चर्य देख रहा है बलभद्र भट्टाचार्य, देख रहे हैं व्याघ्र मृग अनन्य करे आलिंगन मुख्य मुख दिया करे अनन्य चुंबन। तो ये केवल नृत्य नहीं कर रहे थे बाघ और मृग, ये नृत्य करते करते हरे नाम का उच्चारण करते करते एक दूसरे को आलिंगन करने लगे, बाघ और मृग एक दूसरे को आलिंगन करने लगे और एक दूसरे को चुंबन देने लगे, मुख में मुख मिलाकर। तो इस प्रकार का दृश्य ये केवल कृष्ण स्वयं में उन्मत्त व्यक्ति के साथ ही घटित हो सकता है। जहां प्राकृतिक नैसर्गिक वैर भाव समाप्त हो जाता है और कृष्ण प्रेम का उदय होता है, तो कृष्ण प्रेम में इस प्रकार का दृश्य देखा जा सकता है। तो बलभद्र भट्टाचार्य तो इस प्रकार का दृश्य देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए कि बाघ और मृग परस्पर को आलिंगन कर रहे हैं और चुम्बन दे रहे हैं, जब एक दूसरे को बाघ को ये मृग को खा जाना चाहिए, किंतु ये अपना क्रोध को त्याग करके मृग को आलिंगन किए हुए और उसको चुम्बन दे रहा है। कौतुक देखिया प्रभु हंसते लागेला, कहां सभा के कहां छड़ी आगे चली गई। जब चैतन्य महाप्रभु ने इस दृश्य को देखा तो हंसने लगे चैतन्य महाप्रभु। उनको वृंदावन का स्मरण हुआ कि वृंदावन में जिस प्रकार होता था बाघ और मृग आपस में मिलते थे, उस प्रकार यहाँ पर बाघ और मृगों को आपस में मिलते हुए देखकर चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे और ये सोचने लगे कि ये कृष्ण प्रेम का ही प्रभाव है, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सोचकर वो आगे निकल गए, अर्थात उनका जो मिशन था चैतन्य महाप्रभु का वो पूर्ण हो गया, क्योंकि वो पशु पक्षियों को कृष्ण प्रेम देना चाहते थे। तो जब उन्होंने देखा कि अब ये जंगल के पशु आपस में कृष्ण प्रेम में आविष्ट होकर नृत्य कीर्तन कर रहे हैं, तो वो बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उनका जो मिशन था पशुओं को कृष्ण प्रेम प्रदान करना वो उसमें सफल हुए। तो इस प्रकार उनको छोड़कर चैतन्य महाप्रभु आगे निकल गए। तो उसके बाद पक्षी आते हैं, अब पशुओं की बात कही जा रही थी, उसके बाद पक्षी आते हैं। मयूरादि पक्षीगण प्रभु रे देखिया संगे तले कृष्ण बलि नाचे मत्त है। तो जब आगे चैतन्य महाप्रभु नृत्य कीर्तन करते हुए जंगल में चल रहे हैं, तो कुछ मयूर के झुंड आकर वहां पर उतर, तो ये मयूर राधि पक्षीगण जब इन मयूरों ने देखा श्री चैतन्य महाप्रभु को, तो संगे चले चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ चलने लगे। इस प्रकार वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के अपरूप सौंदर्य को देखकर मयूरगण उनके साथ साथ चलते थे और उनके साथ नृत्य भी करते थे। कभी कभी वृंदावन में ये प्रतियोगिता होती थी, कंपटीशन होता था कृष्ण और मयूरों में, मयूर नृत्य करने लगते थे और कृष्ण नृत्य करने लगते थे। तो कृष्ण का नृत्य देखकर ये मयूरगण इतना आनंदित हो जाते थे, क्योंकि कृष्ण के साथ मयूरगण भी नृत्य नहीं कर सकते, कृष्ण इतने सुंदर ढंग से और तेजी से नृत्य करते थे कि मयूरगण भी उनकी क्षमता नहीं कर सकते। इसलिए मयूरगण प्रसन्न होकर अपना पंख झाड़ देते थे, कृष्ण को अर्पित करते थे उनके पंखों को अपने मस्तक में धारण करने के लिए। तो इस प्रकार कृष्ण मोर पंख धारण करते थे वृंदावन। तो ये मयूरगण चैतन्य महाप्रभु के साथ चल रहे हैं, संगे चले कृष्ण बलि नाचे मत्त है, और ये मयूरगण भी कृष्ण कृष्ण कहकर नृत्य करते हुए चैतन्य महाप्रभु के साथ चल रहा है। हरि बोल बलि प्रभु करे उच्च ध्वनि। चैतन्य महाप्रभु ने बड़े उच्च स्वर में कहा हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो इस प्रकार जब चैतन्य महाप्रभु कहने लगे तो वृक्ष लता प्रफुल्लित सही ध्वनि सुनी। तो चैतन्य महाप्रभु ने उच्च स्वर में ये हरि ध्वनि क्यों की ना, पशु पक्षियों का उद्धार उन्होंने कर दिया, अब वृक्ष लताओं की बारी है। तो जंगल में जितने वृक्ष और लताएं हैं उनको भी उद्धार करना चाह रहे थे चैतन्य महाप्रभु। इसलिए अपने उच्च स्वर में जब वो हरि बोल कहने लगे तो वृक्ष लता प्रफुल्लित हो, क्योंकि वृक्ष लताओं का भी कान है, वो सुन सकते हैं, ऐसा दिखाया गया है कि जहाँ पर फसलें होती है वहाँ पर यदि संगीत की ध्वनि की जाए प्रतिदिन तो वहाँ पर अच्छी फसल होती है। तो वृक्ष लताओं का भी कान है, वो संगीत की ध्वनि को पसंद करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने उच्च स्वर में जब हरिध्वनि उन्होंने की तो उस जंगल में जितने वृक्ष और लताएं थी तो ये सब प्रसन्न हो गए, प्रफुल्लित हो गए। और इस प्रकार झारीखंड अबर जंगम आचे जत कृष्ण नाम दिया कैला प्रेमे से उन्मत। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जिस जंगल में जा रहे थे उसका नाम झारीखंड जंगल था, झाड़खंड। तो उस जंगल में जितने स्थावर और जंगम अर्थात जो प्राणी चल सकते थे और जो चल नहीं सकते थे, जो चल नहीं सकते उनको स्थावर कहा जाता है, जैसे वृक्ष लता ये प्राणी है जो चल नहीं सकते, और जंगम उन प्राणियों को कहा जाता है जो चल सकते। तो स्थावर और जंगम हो जाता है। तो जितने वृक्ष लता और पशु पक्षी आदि थे उन सबको कृष्ण नाम प्रदान करके कृष्ण प्रेम में उन्मत्त करते हुए चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़े। तो आज समय हो चुका है, हम कल के सुबह के सत्र में फिर चैतन्य महाप्रभु के इस प्रेमदान लीला का आगे की चर्चा करेंगे। फिर आगे किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने और किसका उद्धार किया और किस प्रकार कृष्ण प्रेम को प्रदान किए, हम कल सुबह के सत्र में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।